जयति जन निवासो देव की जन्म वादो जदुवर परिषद सही तो दर्शन धर्म श्री चरण जिन बिना सुष्म कुशी देव ऋतु बलिदान अर्थ काम के मतलब था कि जो प्राणी मात्र के हृदय में जो विराजित है वास्तव जन माने भक्त, जो भक्तों के हृदय में विशेष रूप से जो निवास करते हैं वो साथ ही साथ देवकी के पुत्र है। तो देव जन निवास हैं ये भी बात है, और देवकी के जो पुत्र हैं ये भी बात मात्र है। मैंने कुछ लोगों का ऐसा मत है, बात है, प्रवाद है, और जादूगर परिषद जो भी लोग उनके परिषद हैं ये भी बात है। और दुर्निरसन न धर्म, वो धर्म के स्थापना करने के लिए और धर्म को दूर करने के लिए अपने बाहुबल का प्रयोग करके धर्म का अधर्म का विनाश करते हैं और धर्म की प्रतिष्ठा करते हैं, इसलिए उनका अवतार हुआ ये भी बात है। क्या बात नहीं, क्या सत्य क्या है, अब उसके लिए ये बदलाव। सुस्मित श्री मुखे नज चर ब्रिज लग्न ब्रजपूर्व का नाम वर्धयन काम दे। असल में ब्रज के जो कि ब्रिजी माने ब्रज, ब्रज के जो स्थिर और चर, स्थिर माने पेड़ पौधे लताएं गुल्म, और चर माने हिरण इत्यादि जो चलने वाले हैं, इन सब के प्राणियों के जो दुख है, विरह के दुख कृष्ण के प्रति, इनको दूर करना, इसके लिए वो अवतरित हुए। और विशेष करके अपने सुस्मित मुख से ब्रजपुर वनिता नाम, ब्रज और पुर की वनिताओं के काम को, प्रेम को बढ़ाने के लिए ही जगत में उनका अवतार हुआ। ऐसे जो काम देव स्वरूप हैं उनके उनकी जय। हम लोग उनकी टीका में कुछ पढ़े थे, जन का दो अर्थ बतला है, प्राणी मात्र और दूसरा बतला है भक्त। प्राणी मात्र में वो तटस्थ रूप से साक्षी के रूप में वो विराजमान रहते हैं प्राणी मात्र में, और अपने भक्तों में विशेष रूप से रहते हैं। ऐसा क्यों? तत्समदर्शी कहा है, भगवान अपने भक्तों को अधिक प्यार करते हैं तो ये तो उनकी एक समदर्शिता की हानि हुई। यदि लोग जगत के ये समझते हैं जितने भी प्राणी हैं जैसे भी हो सब में भगवान समदर्शी होते हैं, जैसे आप समदर्शी होता है, कोई भी हो उसकी सेवा करने वाला भी हो किंतु आप में हाथ डालेगा तो वो जलाएगा, और आपका भी शत्रु होगा तो भी उसको भी जलाएगा। पानी सबको जीवित रखेगा और पानी में कोई डूब जाएगा तो डुबा देगा, वो समदर्शी। ऐसे भगवान भी समदर्शी हैं कहते हैं। तो भगवान यही बात पूछा युधिष्ठिर महाराज जी ने, आप कहते हैं कि भगवान समदर्शी है, अब मैं देखता हूं कि भगवान समदर्शी नहीं है। प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकश्यपु को मारा क्यों? यदि समदर्शी है ऐसा क्यों? भगवान यदि समदर्शी है तो देवताओं का पक्ष लेते हैं और असुरों का विनाश करते हैं क्यों? उन्होंने दुर्योधन और अर्जुन में से चुन करके अर्जुन का पक्ष लिया और दुर्योधन को मरवाया, ऐसा क्यों? उन्होंने अर्जुन का पक्ष लेकर के द्रोणाचार्य और भीष्म जैसे लोगों को भी नारायण कर्ण इत्यादि को अन्याय के तरीके से मरवाया भगवान ने। ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर नारद जी ने दिया, किंतु वो ऐसा उत्तर है जो सब लोग नहीं समझेंगे, सारी नहीं समझेंगे। साधारण रूप में हम लोग ये समझेंगे, सूर्य सब पर समभाव से समदर्शी है, सबको समान रूप में लाइट देते हैं, और कोई घर में ही बंदा रहे और वो कहे कि हमको भी लाइट दें, दूसरों को वहां पर बाहर में सबको लाइट दे रहे हैं, यहां पर क्यों नहीं दे रहे हैं? तो ये भगवान सूर्य जी समदर्शी रहेंगे कि नहीं? भले ही वो ऐसा कहता है, किंतु सूर्य तो समदर्शी है। चमगादड़ दिन में नहीं देखता, रात में देखता है।
उल्लू उल्लू
उल्लू भी ऐसे, तो उसके लिए सूर्य किसी का पक्ष लेते हैं? ऐसा तो नहीं। इसलिए जो भगवान का भजन करेगा, भगवान उसके प्रति प्रीति करेंगे, जो नहीं प्रीति करेगा तो नहीं करेंगे। यही समदर्शिता है। इस समदर्शिता को समझना उन लोगों को जो शरीर में आसक्ति रखते हैं, वो लोग नहीं समझ सके, नहीं समझेंगे। जो भगवान के प्रकाश में आया था तो भक्ति करते हैं, भगवान उनके प्रति अनुरक्त रहेंगे। जो जितना ही बड़े भगवान के तरफ में अनुरक्त होगा, भगवान भी उसके तरफ में अनुरक्त होंगे। ये समदर्शिता की हानि नहीं है। दूसरी बात, उनके समझ में नहीं आता कर्ण दुशासन और शिशुपाल अपने इस शरीर के स्वभाव को बदल नहीं सकते थे। तामस शरीर में भगवान का भजन नहीं होगा, नहीं हो सकता। भगवान ने उनके ऊपर लौकिक शरीर को, पार्थिव शरीर को मारा, हटा दिया। मारना ने क्या, उसको हटा दिया, और हटा करके उसको कुछ आत्मज्ञान की तरफ में बढ़ा दिया। ये उनकी कितनी बड़ी कृपा है, यही उनकी समदर्शिता है। बच्चा आग में हाथ दे रहा है और मन निषेध करने पर भी नहीं मानता। मैया ने एक थप्पड़ उसको दिया और दे करके हटा दिया वो रोने पर। यही उसकी समदर्शिता है, ये इसकी कृपा है। इस चीज को संसार वाले नहीं समझते। दुर्योधन इतना जो पाप कर रहा था और भीष्म पितामह और द्रोण उनका पक्ष ले रहे थे। भीष्म पितामह जी तत्वज्ञानी हैं, किंतु विषयी का अन्न खाने से उनकी बुद्धि मलिन हो गई है ना? और मलिन बुद्धि से उनका पक्ष ले रहे हैं, समझ रहे हैं कि मैं अन्याय कर रहा हूं, किंतु फिर भी समझ करके भी उनका पक्ष ले रहे हैं। और ये भी द्रोण भी समझ रहे हैं कि मैं अन्याय कर रहा हूं, अन्याय के पक्ष में लड़ रहा हूं, हमको नहीं चाहिए, तो भी कर रहे हैं। वो लोग नहीं जानते थे अर्जुन इत्यादि जो पांचों पांडव हैं, न्याय की तरफ में, और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी विजय हो, किंतु हम लड़ेंगे अन्याय की तरफ से भी। मतलब ये जानते हैं कि अन्याय, तभी लड़ रहे हैं अन्याय की तरफ। जानते हैं कि दुर्योधन बहुत दुष्ट आदमी है, उनका हक है लेने का, तभी उन लोगों को अब इस शरीर से कुछ और नहीं होने का था। यदि शरीर बदल जाए तभी कुछ होगा, इसलिए भगवान ने उनके शरीर को बदल दिया और बदल करके आत्मज्ञान की तरफ में ले गए, उनका कुछ कल्याण किया। ये लोगों को समझ में नहीं, उन्होंने देखा जे सारे नहीं, उनके तो विपरीत होकर के अर्जुन का पक्ष लिया और इनके विपक्ष बन गए, ये नहीं समझ। इसलिए भगवान अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं, पक्ष लेते हैं। वो निष्पक्ष नहीं है, तटस्थ और समदर्शी नहीं है। जो कहते हैं ये समदर्शी हैं, ये ठीक नहीं। और ये समदर्शी न होकर के भक्तों का पक्षपात करते हैं, जो धर्म के ऊपर में चलते हैं, ये जगत के कल्याण के लिए है।
इसी में सबका हित है, उनका भी हित है, हमारा भी हित है, विश्व का भी हित है। तो जन निवासो साधारण रूप में जन के अंदर में रहते हैं, निवास करते हैं, तो अभी भक्तों के हृदय में अधिक रूप, जैसे हम लोगों के अंदर में है, साक्षी हैं, अच्छे बुरे को देखते हैं, उसका फल भी देने और देते हैं। बिल्ल मंगल के हृदय में जो थे वो क्या करते हैं, वो उनको प्रेरणा देते हैं जो कैसे तुम हमारे तरफ में, ददामि बुद्धि योगम तंग माम उपयांति, कैसे तुम हमारे तरफ में आए आओगे, उनको दे रहे क्यों, उसके लिए वो योग्य पात्र हैं। जो भगवान की तरफ में बढ़ करके भगवान को पाने के लिए चेष्टा करेगा, भगवान उसको बुद्धि योग देते हैं, प्रतिज्ञा करके चुकाते हैं, ददामि बुद्धि योगम तंग माम उपयांति, जैसे कि उसको प्राप्त करते, ये भगवान चैत्य गुरु के रूप में प्रेरणा देते हैं, इसलिए यहाँ पर भगवान तटस्थ नहीं है। इसलिए जो ऐसा समझते हैं जो भगवान तटस्थ हैं, समदर्शी हैं, वो उन लोगों को क्यों, ज्ञानियों के लिए, भक्तों के लिए नहीं। और उस पर भी इतना होते हुए भी सबके जन जन में निवास करते हुए भी देवकी के पुत्र बन करके, देवकी मैंने यहाँ पर यशोदा जी समझो, देवकी में जन्म ये बात है, ये लोग प्रसिद्ध केवल मात्र हैं, असल में वो यशोदा के ही पुत्र हैं। जदुबार परिषद ये भी बात है, ये भी यथार्थ तथ्य नहीं है, और अपने भुजाओं से ये तो दृष्टि मात्र से ही विश्व का जितना जो कुछ अधर्म है वो दूर कर सकते हैं, एक भ्रूभंगी से ही कर सकते, उनके लिए लड़ने की जरूरत नहीं। या पांडवों को अपने कार्य की सिद्धि के लिए व्यवहार करने की जरूरत नहीं, जो विश्व ब्रह्मांड का लय प्रलय एक सेकंड में कर देंगे, फिर पुनराय सृष्टि कर देंगे, लाख बार सृष्टि करके और उसका श्रृंगार कर देंगे, उस प्रभु के लिए ये सब संस रावण और जरासंध इत्यादि का वध करना, ये कौन सी बड़ी भारी बात है। इसलिए कहते हैं ये भी बाद में आपसे नग्न। यहां पर साधारण अर्थ होगा कि स्थिर और चर जितने भी प्राणी हैं विश्व के, उनके ब्रिजिन माने कष्ट को हरण करने वाले, दूर करने वाले, कोई भी शरणागत हो जाए ये काम करेंगे, किंतु विशेष रूप से ब्रज के जो है ना, ये कौन है, कोटि कोटि जन्मों से आराधना करके जो पेड़ लता वृक्ष गाय, ये कभी श्रुतियों के मंत्र गाय बछड़े बने हुए हैं, वहाँ के पौधे कैसे हैं, बड़े बड़े ऋषि महान शक्ति संसार से आसक्ति छोड़ करके भगवान का ब्रज का प्रेम आने के लिए अर्जुन भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर और द्रौपदी पेड़ बने हुए हैं, इनको तो हम जानते इसलिए करें, किंतु तो और पेड़ों के संबंध में हम नहीं जानते हैं, ये इससे भी कोई कोई महान हो सकता है, इसलिए वो साधारण नहीं है। उनके दुख को अर्थात वो भगवान को पाने के लिए ये जो तपस्या कर रहे हैं पेड़ इत्यादि की जोनी में, कृष्ण आए और उसी जोनी में उनसे फूल चुन रहे हैं, फल ले रहे हैं, पेड़ों पर कितने प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे हैं, पर्वत के ऊपर में क्रीड़ाएं कर रहे हैं, बंसी बजाते हैं, मयूर सब आकर के नृत्य करने लगते हैं, और सब पक्षी सभासद होकर के उसको देखने लगते हैं, ये उन पर कृपा करते हैं, उनका दुख दूर कर देते हैं। सुस्मित श्री मुखे ब्रजपुर बलितानं वर्धयन् कामदेव, इसमें के द्वारा समस्त उस समय की जितनी भी लीलाएं संबंधी वो सब इसमें लीला आ जाएगी, जो श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है, बेनिगुप्त से लेकर के गोचारण जितनी भी लीलाएं हैं ये सब उसी के अंदर में आ जाएगी। इसलिए एक श्लोक के अंतर्गत में उपसंहार में ये भागवत की समस्त लीलाओं को समावेश करते हुए उपसंहार, एक श्लोक में ही समस्त श्रीमद् भागवत, जैसे आदि वाला श्लोक है
जन्मादस्यतनया,
इसमें प्रभुपाद ने कितनी 40 दिन तक इसकी व्याख्या की और समस्त भागवत इसमें ले आए, वैसे ही इसी श्लोक में भी समस्त श्रीमद् भागवत की कथाएं आ जाएंगी एक एक करके, जो कुछ तत्व है वो सब आ जाएगा। अतः परम ऐश्वर्य की पराकाष्ठा दिखलाने के लिए करें जदुवर परिषद, जदुवर सभा जिनकी सेवा करती है, जदु कुल के जो जितने भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ति लोग हैं, जैसे उग्रसेन, अक्रूर, सात्विकी, बलदेव प्रभु, कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, उनके पुत्र अनिरुद्ध, शक्ति, गौ,
सारण,
ये कितने सब वीर सब लोग हैं, ये सब जदुवरों की सभा जब बैठती है ना, बीच में उग्रसेन को बैठा देते हैं और एक तरफ में अक्रूर इत्यादि लोगों को ये सब बैठा देते हैं, बड़े बड़े वीरों को, और दूसरी तरफ में वसुदेव जी बैठते हैं। इसके बाद में और सब बैठने के बाद में कृष्ण बलदेव जी, इसके बाद में कृष्ण अपने को छोटा दिखलाते हैं, किंतु हैं ये सब कृष्ण के ही परिकर, यदुवर परिषद। इसमें जदुवर परिषद का कहने का ये तात्पर्य है, ये जदुकुल से जिन लोगों ने द्वेष किए, जरासंध, कंस, वो
पौंड्रक वासुदेव
और
शिशुपाल,
बाल जवन, शिशुपाल, दंत भक्त, जिन जिनों ने जदुकुल का विरोध किया वो सबको मारा, ध्वंस किया। अथवा जदुवर कहने से कल बतलाया था, ये जदुकुल के रहने वाले और उनके नंद जी के पिता परजन्य जी के वंश के रहने वाले सब जदुकुल में आए, ये जदु में है, गोप गोपियां जितनी है सब उसके अंदर में आए। यहां पर पारिजात इत्यादि हरण करके ले आए, सुधर्मा सभा को स्वर्ग से उखाड़ कर दिया करके यहाँ पर स्थापित कर दिया, ये सब कथा है। नरकासुर का वध करके समस्त महिषियों को उद्धार किया उन्होंने, पारिजात हरण के समय में तो सत्यभामा के साथ गरुड़ पर बैठ करके गए और पहले नरकासुर का वध किया और जाकर के फिर पारिजात हरण करके उनको लेकर के लौट। यहां तो सर्वदेव पराजय प्रस्ताव में परमेश्वर जी महिमा कितनी अद्भुत इनकी है, परमेश्वर जी महिमा है। और उनके देश करने वाले कंस पिता उग्रसेन, कंस के पिता उग्रसेन को, जो कंस का कंस कृष्ण के और अपने पिता का भी द्वेष करता था, उनको राज्य और सुधर्मा इत्यादि सभा उनको और तिलक अपने हाथों से उनको दिया। कहते हैं कि यदि यही बातें ठीक हैं तो देवती जी के गर्भ से उनका जन्म ये बात कैसे रहा, देवकी जन्म बाद, अर्थात बाद उसको कहते हैं जो रियल स्थिति नहीं है और उसकी ख्याति केवल है, इसको कहते हैं बाद। जैसे ब्रह्मवाद केवल अद्वैतवाद, ये बात है केवल अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैत, विशिष्ट अद्वैतवाद,
शुद्धाद्वैतवाद,
शुद्धा अद्वैतवाद,
द्वैत अद्वैतवाद,
भेदाभेद वाद, ये सब बात भी और अचिंत भेदाभेद तत्व है, ये तत्व है, ये बात नहीं है। बात कहते हैं उसमें जिसमें कि बात लड़ाई स्थापन और ये सब होता है, बात विवाद होता है, उसको बात कहते हैं। और वो ठीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और तत्व में वो निश्चित रूप में होगा ही, इसको कहते हैं तत्व। इसलिए अचिंत भेदाभेद तत्व चेतन महापुरुष के द्वारा प्रचारित और बाकी सब बात। इसलिए इसमें सब बात है, केवल सुस्मित सी मुखे न बजपुर वनितानंद वर्धयन कामदेव, यही तत्व इसका, ये तात्पर्य क्यों बतलाये ना, भक्ता नाम विनोदार खाय
करो विविध क्रिया।
फिर स्वयं जो भी रश्मि का यहाँ पर फिर से बतला रहे हैं, इच्छा मात्र से अशेष प्रकार के जो अधर्म है इच्छा करने से ही दूर कर सकते हैं कृष्ण, बस इच्छा क्या दूर हो जाएगा, अधर्म की बात क्या, यह समस्त सृष्टि का लय कर देंगे और सृष्टि को फिर से कर देंगे। ये अधर्म है, ये क्यों होता है, अधर्म का मूल क्या है, अविद्या, अविद्या किसको कहते हैं,
कृष्ण को भूलना,
कृष्ण को भूल करके इस संसार को ही ये सत्य है और उसके प्रति जो कर्तव्य हमारा है यही सत्य है, इसका नाम अविद्या है। कृष्ण को भूल करके यहाँ के कर्तव्य को ही असल मान करके व्यवहारिक को प्रैक्टिकल मान लेते हैं, और असल में जो प्रैक्टिकल है उसको मान लेते हैं
बातचीत मान लेते हैं,
प्रैक्टिकल और एक
थियोरिटिकल,
थियोरिटिकल वो कहते हैं कि आप लोग थियोरिटिकल क्या ना, प्रैक्टिकल क्या करते हैं, हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल लोग क्या करते हो, अरे ये शरीर तो आज ना कल चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा कर्म नित्य है या क्या है, नित्य नहीं, इसलिए तुम्हारे जितने भी कर्तव्य हैं केवल सामयिक हैं और अनित्य हैं, इसलिए इसको करते हुए कोई सुख शांति नहीं पा सकता। जैसे हिरण्यकश्यपु से बढ़कर के कर्मी कौन होगा, होगा विश्व ब्रह्मांड में कोई कर्मी, किंतु उसके कर्मों का अंत कैसे हुआ, यदि वैसे लोग देखो, रावण ने अपने राज्य में सोने का सबको भवन बना दिया, सोने की लंका बना दी, आजकल के लोग क्या बनाएंगे, अपने लंकापुरी के रहने वाले सबके लिए तनिक भी कष्टदायक नहीं था, वो तो जैसे आजकल के लोग हैं चाहते हैं कि उसको हरा करके, अमेरिका चाहता है विश्व को हरा करके उनका सब संपत्ति हमारे यहाँ, यही तो चाहते हैं ना, और क्या चाहते हैं, चाइना यही चाहता है, सब लोग यही चाहते हैं, सब लोग उसी के पथ पर हैं। इसलिए हिरण्यकश्यपु और रावण जैसे कर्मी जगत में नहीं है, किंतु उनको असुर कहा गया है, ये असुर है, इसलिए कर्म एक स्थूल चीज है, इसलिए सुख और शांति इसके द्वारा नहीं मिलेगी, किंतु हम समझते नहीं और अपने को पावन बुद्धिमान समझते हैं, और दूसरे सब के ऊपर में हम समझते हैं, यही विचार तुम भी लो जो हम विचार, इसलिए यहाँ पर अविद्या ही मूल है इस संसार का, जो जितना बड़ा कर्मी है उतना ही अविद्याग्रस्त है। कृष्ण इसको क्षण मात्र में दूर कर देते हैं इस अविद्या को। यहाँ तक कि श्रीमद्भागवत में ऐसा लिखा गया है स्थूल रूप में ही कि कृष्ण कांटे से कांटे को निकाला, एक कांटा गड़ गया पैर में ना, तो कांटा को निकलने के लिए क्या करेंगे, और कोई चीज है नहीं, सुई नहीं है, या सुई भी कांटा ही है,
उस सुई से या कोई और कांटा ले करके अलग से और उस कांटे को निकाला और फिर क्या करते हैं दोनों कांटों को
फेंक देते हैं।
दोनों कांटों से तो कांटा निकालने के लिए कांटा था, उसी प्रकार से कृष्ण ने कांटों के द्वारा कांटा निकलवाया और निकाल करके दोनों कांटों को, अर्थात महाभारत के युद्ध में वो जो विरोधी जो कांटे थे जो पहले से गड़े हुए उनको और लोगों के द्वारा निकलवाया और जातों के युद्ध में परस्पर उस कांटे को भी जिससे वो कांटा निकाला था संसार का भार धारण किया था उसको भी ये दोनों कांटों को फेंक दिए और निश्चिंत होकर के अप्रकट लीला में प्रवेश कर गए। यथार्थ में ज्यादा लोग कांटा तो नहीं थे किंतु दिखला रहे हैं, इसलिए ऊपर से लड़ाई इत्यादि करवा करके उनको भी दूर कर दिया जो हमारे जाने के पहले ये भी सब समाप्त हो गया, नहीं तो जगत के महाजंजाल हो। इसलिए अर्जुन भीम और इन सब लोगों के द्वारा जातियों के द्वारा समस्त जगत के अधर्म को दूर किया और अंत में उसको भी छोड़ करके नित्य लीला में प्रवेश हो गया। उन्होंने आयुध इत्यादि शंख चक्र गदा इत्यादि भी धारण किए, कभी चतुर्भुज और कभी द्विभुज ये भी दिखलाए, ब्रज में सब समय द्विभुज और द्वारका इत्यादि में कभी कभी चतुर्भुज और द्विभुज अधिकार, कभी कभी युद्ध पौंड्रिक इत्यादि और बाणासुर के युद्ध में चतुर्भुज के रूप में दिखलाए, ब्रज में एक बार दिखलाए किंतु उसका कोई मूल्य ही नहीं
था,
गोपियों ने उनको केवल दूर से प्रणाम करके उनके तरफ से बातचीत की और राधा जी को देख करके वो भीतर पेट में चला गया, इसलिए पैछा हो गया शरीर में प्रवेश कर गया, केवल दो ही हाथ रहा। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कृष्ण ने ऐसा कौन सा कार्य किया जिसमें जयजुक्त हो रहे हैं, उसके उत्तर में बोले दुर्भी गोवर्धन को धारण किया ना, यहाँ गोवर्धन को धारण किया गया और अद्भुत अद्भुत कार्य किया, खेलते खेलते ही कूद करके मंच पर चढ़ गए और कंस जैसे भी को गिरा दिया और नीचे आए तो तब तक मारा कुछ भी नहीं करा, अगर तो बकासुर जैसे राक्षसों को खेलते खेलते ही छोटी सी उम्र में किसी को पैर से खेल रहे थे और लग गया तो उलट गया मर गया, किसी का गला पकड़ करके भूल गए और आंख रस गुंडे की तरफ निकल गई तो मेरा क्या दोष, इसी तरह से सब असुरों का एक लीला में माधुर्य के रूप में ही उन्होंने बल दिया, तो द्वारका इत्यादि में कभी कभी ऐश्वर्य देखने को मिलता है। पांडव रूपी भुजा इत्यादि के द्वारा जगत का विनाश किया, इसलिए वो जय कहते हैं कि पांडव लोग भी कम तो नहीं थे, पांडव भी बड़े वीर थे ना, किंतु दिखाया कि कृष्ण के बिना इन पांडवों का कोई मूल्य नहीं पड़ता, ऐसे वीर अनुठा कांडी अर्जुन और उनका कांडी भी नहीं उनसे उठ पड़ा, और साधारण अहिर जाति के लोगों ने उनको पीठ पाट करके और उनकी स्त्रियों को छीन लिया, कृष्ण की स्त्रियों को उनका बल कुछ काम नहीं किया तो रो रहे थे युधिष्ठिर महाराज, महाराज मैंने महाभारत के संग्राम में इतना बड़ा बल दिखलाया और यहाँ पर हमारा बल कोई काम में नहीं आया, कृष्ण जब चले गए हमारा बल और सब कुछ वो लेते चले, एक साधारण अहिरों को मैं हरा नहीं सका, हमारा धनुष ही नहीं था, बाण चलाना तो बहुत दूर की बात, और मेरे सामने देखते देखते उनको लूट लिया, हमारा बल अभिमान सब चूर हो गया। ये क्यों हुआ? कृष्ण की वजह। फिर कहते हैं जो जरासंध का वध हुआ, जरासंध का वध कैसे कराया?
भीम के द्वारा।
अपने लिए था जो उसका वध नहीं कर सकेंगे, जदुवंशी कोई भी
मार नहीं सकता,
मैं उसको मार सकता, ऐसी तपस्या थी। तब देखा जी हमसे तो वध नहीं हुआ, वध नहीं कर सकते थे, वध किसने किया? भीम ने। भीम से उनसे युद्ध करवाया, भीम से कहा जे तुम मांगो वर मांगो, तो वर मांगे, अजय वर मांगो, क्या चाहते हो? मैं ब्राह्मण हूँ, उन लोगों ने कहा। भीम बन करके गए शिष्य और कृष्ण गुरु बने। तीनों गए वहां राजसभा में, सब लोग जब लेकर के अपना अपना इच्छित वस्तु से ले लिया, इच्छित वस्तु क्यों करो? जब मैं तो वो इच्छित वस्तु ले लेने के बाद इन दोनों से तीनों से पूछा जरासंध ने, आप लोग ब्राह्मण मालूम पड़ते हैं, आप लोग क्या चाहते हैं बतलाइए, क्या मांग? इन लोगों ने परस्पर परस्पर देखकर के कहा, हम आपसे युद्ध चाहते हैं, आप लोगों में से कोई भी हमसे युद्ध करे, हम लोगों में से किसी के साथ में हम युद्ध क्या? तो उसने कहा, हंसने लगा, अरे तुम लोग ब्राह्मण नहीं हो, मैं कैसा सुन रहा? तीनों की यहां पर दाग है, तुम लोग क्षत्रिय हो, तो ठीक है अब मैं समझा, उस काले से तो युद्ध नहीं करूंगा, वो हमसे 21 बार पीठ दिखा चुका है, और माता पिता का बाप का कोई भी ठीक नहीं, कहाँ का है, कहाँ जन्म हुआ ये भी ठीक नहीं, इसलिए मैं इसे नहीं युद्ध करूंगा। और वो जो है ना आधा स्त्री आधा पुरुष,
नपुंसक,
नपुंसक है, नपुंसक है, मैं युद्ध नहीं करता, मैं वीर लोगों से ही युद्ध करता, हाँ ये थोड़ा सा है, तो ये हमारे सामने तो कुछ नहीं है कि तभी इसे मैं युद्ध करूंगा,
बच्चा है
इनके साथ। जब युद्ध होने लगा, कितने दफ युद्ध हुआ, कोई हारे जीते नहीं, बल में भीमसेन कुछ बलवान और वो दाव पेश में बलवान, वो कुछ अधिक उम्र का, और भीम जो थे अभी कुछ नवयुवक थे, वो प्रौढ़ उम्र का था, किसी की हार जीत नहीं हो रही। जब देखा कृष्ण ने जैसे भीम कुछ कम पड़ने लगे तो उत्साह दिया, और एक मोथा का पौधा लिया, मोथा होता है
घास,
घास, और उसको लेकर के ऐसे दिखला करके छिप करके और ऐसे लेकर के अर्जुन उनको दिखलाया, देखो दिया ऊपर से नीचे, मतलब क्या है? तो ये कौन मरवाया? कृष्ण यदि ये नहीं बोलते तो वो कभी अर्जुन मारते नहीं, बल्कि वो उनको खत्म करते। जबकि दुशासन का वध हो रहा था उस समय में,
दुर्योधन का
भीम ने दुशासन को पकड़ लिया और राक्षस जैसा ये करके, और मानो उसका खून पिएंगे, भुजा को उखाड़ रहे, और वो बकरी की तरह मेमे मेमे करने लग गया। उस समय में हाथ में पैर से दबा रखा और कहा जैसे दोनों सेनाएं देख रही हैं, विश्व का कोई भी वीर हो कहीं भी दोनों सेनाओं में और या संसार में कहीं कोई भी आकर के इसकी रक्षा करे, मैं इसकी भुजा उखाड़ रहा हूं, कोई भी यदि है विश्व में इसकी रक्षा कर सके, पाताल में स्वर्ग में कहीं भी हो इसकी रक्षा। उस समय अर्जुन को ताव आ गया, धनुष उठाया, कहा जैसे मैं तुम्हें एक बाण में खत्म करूंगा। तो कृष्ण ने उनको हाथ पकड़ करके बैठाया, बोला जी आज के दिन तुम कुछ नहीं कर सकते, आज का अपना निसिंह स्वरूप का जो बल था आज मैंने सब कुछ इसको दे रखा है, आज तुम क्या, मैं भी इसे लड़ करके पार नहीं पाऊ, आज हम सबको भी खत्म कर दे, आज अपनी प्रतिज्ञा पूरा करेगा, तुम बेकार का ऐसा मत करो, भगवान का बल उसमें है, कारण हमारा बल। इसलिए ये सब कुछ कराया किसने, कृष्ण। बर्बरिक नाम का एक
घटोत्कच के पुत्र,
घटोत्कच का पुत्र था,
नाते
वो महाभारत युद्ध होने से पहले वहां आया और कृष्ण को प्रणाम करके बोला जब मैं आपका और भीम का मैं नाती हूं, किस लिए आया, सब लोग आ रहे हैं बड़े बड़े युद्धों में निमंत्रित हैं, हमको भी निमंत्रण नहीं गया तो मैं आया ऐसे ही, मैं इनके तरफ से लड़ू। कृष्ण ने देखा जैसे ये तो एक सेकंड में सबको मार धूर करके सब खत्म कर देगा, उन्होंने चक्र उठाया और उसको गला काट दिया,
पहले परीक्षा दिया, बोले मार से
हाँ पहले परीक्षा दिया, परीक्षा लिखा जी तुम कैसे मार सकोगे, मैं तुम पृथ्वी को कितने दिन में दोनों सेनाओं को ध्वंस कर सकेगा, भीम ने कहा, भीष्म ने पिता कहा कि हम 3 घंटे या कितने में, द्रोण ने कहा कि हम 8 घंटे में, कर्ण ने कहा कि मैं 8 घंटे के आधे घंटे में, अर्जुन ने कहा कि मैं कितने 1 सेकंड की मिनट में मारूंगा, तुम कितने समय में इन दोनों का संहार कर सकते, और जब पलक लगने के पहले ही, अच्छा तो दिखाओ तो, बस एक धनुष लिया, जैसे आप गिनिए देखिए तो पलक ये कीजिए, बस एक पलक लगने के पहले ही सबके छाती में दाग कर दिया उसी बाण के द्वारा, सबके अंदर दोनों सेनाओं को, अजय ये तो मार डालेगा सचमुच, बस उसको चक्र से मार डाल। तो वो प्रार्थना कीजिए प्रभु एक मैं बर चाहता हूँ, मैं आया था सचमुच में ये महाभारत युद्ध देखने के लिए, तो हमको अभी उतने दिन तक जीवित रख करके पहाड़ के ऊपर में कहीं ऊंची जगह पर रख दीजिए, मैं जरा महाभारत युद्ध तो देख लूँ, लड़ाई तो नहीं किया किंतु आपको समर्थन कर, अच्छा ठीक, बस ऊंचे टीले पर या वृक्ष पर कहीं उसका सिर रख दिया, अंबर ने नहीं दिया। जब 18 दिन में महाभारत युद्ध समाप्त हो गया तो अर्जुन कह रहे हैं कि मैंने युद्ध जीता, भीम ने देखा जैसे मैंने युद्ध जीता, युद्ध से मारा था जी हमारे धर्म के प्रताप से मैंने हम लोगों ने युद्ध जीता, द्रौपदी कह रही है मेरे लिए ये युद्ध हुआ इसलिए ये युद्ध मेरे लिए जीता गया, परस्पर विवाद होने लग गया। कृष्ण ने कहा जी सुनो सुनो हमारे साथ में चलो, उनको सबको लेकर के आए उस ऊंची भूमि पर और शिव से पूछा यह बतला तो इस युद्ध में सबसे कार्य किसका हुआ, किसने ये युद्ध संग्राम को जीता, उन्होंने देखा उसने कहा
बर्बरी,
हमने तो यही देखा सब लोग मट्टी की पुतली थे, जो कुछ युद्ध हुआ जो कुछ हुआ ये सब कृष्ण ने अकेले किया और किसी को हमने कुछ देखा ही नहीं, मिट्टी की पुतली थे, सब लोगों ने शीश झुकाया और उसकी बात नहीं, इसके बाद में कृष्ण ने उसे आशीर्वाद देकर के परलोक ले लिया। तो ये सब कृष्ण को इच्छा मात्र से ही ये सब कर सकते थे, उनके लिए अधर्म को ये सब करना किस लिए, इसलिए कि यही कथाएं रहेंगी हमारी भक्त वात्सल्य की और पीछे से लोग श्रवण करके उन लोगों का सब अधर्म से अर्थात वो अविद्या जो बतलाया भगवान को भूलना इससे दूर हो जाएंगे और भगवान को प्राप्त हो जाएंगे, यही यथार्थ कर्म का वो अधर्म को दूर करना मैंने ये है, अधर्म का दूर करना ये नहीं कि उनके पाप को दूर करना या उनको मार करके अधर्म को दूर करने या ये सब ये नहीं, जो पर यथार्थ दया वह है यदि कोई कर सके उस अविद्या को हटा दे, मैं कृष्ण का आदर्श हूँ यह ज्ञान दे दे और सचमुच में यथार्थतः उसकी उपलब्धि करे तब तो उस जीव का कल्याण हुआ, तब तो अधर्म दूर हुआ, नहीं तो अधर्म दूर नहीं हुआ, जितना भी सत्कर्मी और जितना भी कोई हो। इसलिए मधुपुरी की, द्वारका की और ब्रजपुर की जितने भी लीलाएं हैं उन लीलाओं का मूल तात्पर्य अविद्या को दूर करके कृष्ण प्रेम को देना है, ब्रज प्रेम को देना है, इसी से जगत का यथार्थ कल्याण होगा। यहां पर ब्रजपुर बनिता नाम जो बतलाया, ब्रज के बाद में पुर को कहा, दो तात्पर्य के लिए ब्रज और पुर की बनिताएं, अतः ब्रजपुर एक, ब्रजपुर माने घना ब्रज, वहां की जो महिलाएं हैं उनके काम को वर्धन करने के लिए, कामदेव को, कामदेव माने काम के जो प्रेम की जो मूर्ति है कृष्ण, उनके आनंद को बढ़ाने के लिए जो ऐसी लीलाएं की ब्रज में राश इत्यादि सा, ऐसे कामदेव की जय हो। यहां पर बतला रहे हैं कि ब्रजपुर वनिता में पूर की बनता, ब्रज की और पूर की द्वंद समास में, तो ये पहले ब्रज की कह रहे हैं, उसके बाद में मथुरा और द्वारका का नाम लिया। ये उल्टा क्यों होना तो चाहिए था, द्वारका मथुरा और ब्रजपुर की बनिता, ये तो एक वैशिष्ट है। अब उन्होंने कह दिया ब्रज पूर, पूर में द्वारका या मथुरा, पुरी को आगे ले लो, दोनों में से कोई एक को और पीछे लगाओ एक को, तो ऐसा क्यों कहा, तो इसलिए कि लीलाएं ही ऐसी हुई, पहले ब्रज की लीला हुई और उसके बाद में मथुरा की हुई, और इसमें ब्रजपुर का महात्मा अधिक है, इसके बाद में मथुरा का महात्मा।